इन सब बातों को ख्याल में ला करके हम लोगों को भी अब उसका ध्यान करना चाहिए। परमात्मा का स्वरूप कैसा है कि वो है सत्य है, भावरूप है, निश्चय है, ध्रुव सत्य है। वो भावरूप चीज कैसी है कि वो चेतन है, वो आप ही अपने आप को खुद जानता है, उसको कोई दूसरा जान नहीं सकता। और वो कैसा चेतन है कि वो आनंद स्वरूप है, वो सत्य है, चेतन है, आनंद। गीता की दूसरे अध्याय के 16 के श्लोक के पूर्वार्ध में जो ये बतला है कि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत्य जो मिथ्या वस्तु उसका जो कभी भाव नहीं होता, सत्य का कभी अभाव नहीं होता। ये जो लक्षण जो सत्य का बतला है इससे भी वो बहुत विलक्षण है। ये तो बात समझ में आ गई कि ये तो सत्य वो ये असत्य, किंतु वो सत्य और असत्य दोनों से पर है। यदि कहो कि वो सत्य स्वरूप हमारे समझ में आ गया, तो आपके समझ में आने वाला जो सत्य है वो तो जड़ है। आप वही चेतन जानने वाले सत्य आपके समझ में आ गया तो ऐसा सत्य नहीं है, वो किसी के भी समझ में नहीं आ सकता। वो तो सबको जानता है किंतु उसको कोई नहीं जानता। वेदांग समितानी वर्तमान चाधन भविष्यानी भूतानी मानतु वेदन कश्चन। गीता की 7वीं अध्याय के 26वें श्लोक में ये बात बताई। भगवान यहाँ कहते हैं कि वेदांग समितानी जो जितने हो चुके सबको मैं जानता हूँ, और वर्तमान आनी चाहिए ना, हे अर्जुन वर्तमान जो है उनको भी सबको मैं जानता हूँ, और भविष्यानी च भूतानी और भविष्य में होने वाले जो प्राणी है उन सबको भी मैं जानता हूँ, और मान तो वेदनक है किंतु मुझको कोई भी तो नहीं जानता। मैं जानने में आने वाला पदार्थ नहीं हूँ। भगवान सुन आप ही अपने आप को जानते हैं। तो परमात्मा को जो अस्तित्व है वो विलक्षण है, वो दूसरे प्राणियों के जानने में वो अस्तित्व नहीं आवे। आ जाओ तो फिर समझो कि परमात्मा जो चेतन है जी का जड़ समझा जा रहा है। परमात्मा है और वो चेतन है। कैसे चेतन है कि वो ज्योतियों की ज्योति और सबको ज्ञाता दृष्टा साक्षी है, और परमात्मा सबको जानते हैं और उसको कोई भी नहीं जानता। यदि कोई कहे कि ये सब बात सुनकर आपकी मैं उसको जान गया, तो आप जान गया उससे विलक्षण है। आप जाना वो थोड़ा ही है, जो जानने में आपके आ गया तो उससे तो आप ही श्रेष्ठ हो गए, आप उसकी अपेक्षा चेतन हो गए। आपके द्वारा जाना गया वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है, ऐसी उसकी अद्भुत चेतनता है। और आनंद जो हम लोगों को आनंद होता है, जब से ध्यान से, साधन से, सत्संग से, स्वाध्याय से, वैराग से, ये सब प्रकार का आनंद है, सात्विक आनंद है। और परमात्मा को जो स्वरूप है तो गुणा से अतीत है, निर्गुण है। इसलिए वो जो परमात्मा को स्वरूप जो अंग है वो किसी के जानने में नहीं आता। परमात्मा आप ही अपने आप को जानते हैं, और परमात्मा को दूसरा कोई नहीं जान सकता। ऐसा वो सो आनंद, वो कैसा आनंद है कि वो आनंद चिन्मय आनंद, चेतन आनंद है। और जितने जो सुख हैं, तामसिक सुख, राजसिक सुख, सात्विक सुख, इन सबको तो ये जीवात्मा जानता है, क्योंकि वह तो सात्विक राशि तामसी तो गुणों का कार्य है। सात्विक राशि तामसी जो सुख है वो तो गुणों का कार्य है। अब परमात्मा गुणों से अतीत, जानने में आने वाला जो सुख है वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है। एक प्रकार से परमात्मा का स्वरूप इस दृष्टि से मान सकते हो कि जैसे एक आकाश में से जो चंद्रमा है और उसका प्रतिबिंब आईने में दर्पण में पड़ता है और दर्पण में जो दिखता है वो क्या चीज है कि चंद्रमा का छिलका, चंद्रमा का प्रतिबिंब है। असली चंद्रमा तो आकाश में है पर वो आईने में दिखने वाला जो चंद्रमा है वो भी असली चंद्रमा से ही दिखता है, उसका आधार तो असली चंद्रमा ही है। तो इसलिए वो चंद्रमा का प्रतिबिंब होने के नाते उसको आप चंद्रमा का अंश, चंद्रमा का आभास कह सकते। इसी प्रकार से जो संसार का जो सुख है वो असली परमात्मा का जो आनंद में स्वरूप है उसका आभास किया जा सकता है। प्रतिबिंब से प्रतिबिंब जाना जाता है कि ये किसका प्रतिबिंब है, ऐसे इस सुख से थी वो असली परमात्मा का सुख जाना जाता है। किंतु ये संसार का सुख है ये तुच्छ है, क्षणिक है, एक देशी है, विनाशशील है, और वो परमात्मा का जो आनंद में स्वरूप है वो तो सत है, नित है, भाव रूप है, और आप ही अपने आप को भी जानते हैं, ऐसा वो चिन्मय स्वरूप है। वो जो आनंद है वो चेतन आनंद है और ये सात्विक आनंद तक सब है, तो जड़ आनंद है। निद्रा, आलस और परमार्थ से जो सुख मिलता है करने के वो तो तामसी सुख है, त्याज है। और इंद्रियों और विषयों के संबंध से जो सुख मिलता है भोगों के बीच के मां, जो राशि सुख है। और ज्ञान से, वैराग से, सत्संग से, स्वाध्याय से जो सुख मिलता है, वैराग से और ईश्वर की भक्ति से जो सुख मिलता है, ये सात्विक सुख है। राशि और तामसी सुख से तो ये श्रेष्ठ है, किंतु आखिर के बीच की अमा है तो माई की, सतोगुण भी तो माया का ही कार्य है, और वो माया से अतीत जो वो परमात्मा को स्वरूप है। तो परमात्मा को जो आनंद में स्वरूप है तो बहुत ही विलक्षण है, उसकी तो प्राप्ति होने से ही एक प्रकार से अनुभव आता है। अनुभव आना प्राप्ति में एक ही चीज है, फिर जो उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है वह पुरुष भी इस शरीर में आकर उसको बतवा नहीं सकता। इस शरीर में बतवाएगा तो कोई संकेत है या बाणी है या किसी भी प्रकार से तो बतलाया नहीं जा सकता। ऐसा वो परमात्मा का आनंदमय स्वरूप है। साधन काल में इसको लक्ष्य बना करके हम साधन कर सकते हैं, तो वो वास्तव में साधन का फल है। साधन काल में जो आनंद परमात्मा की व्याख्या की जाती है वो तो साधक के लिए की जाती है कि साधु उसको लक्ष्य बना करके उसका ध्यान करें। अनेक प्रकार के विशेषण देकर के समझाया जाता है, उस विशेषणों से वो विशेष वस्तु जानने में आ जाती है। उस परमात्मा का ध्यान द्वैत भाव से भी किया जाता है, अद्वैत भाव से भी किया जाता है। द्वैत माने भेद भाव से, परमात्मा को लक्ष्य बना करके उसका ध्यान किया जावे। ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान किया जावे ये उपास उपासक भेद हो गया, और उसका जो फल आखिरी वो तो एक ही है, वहां तो फिर उपास उपासक नहीं रहते। ये बात जो है गीता की पांचवी अध्याय के 17 के श्लोक में बतलाई है। तद्बुद्धे सदात्मानस्तन्निष्ठा सत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कलंका। इसका भाव यह है, तत्मन ब्रह्म, जिसका मन ब्रह्म रूप हो गया है, जिनकी बुद्धि ब्रह्म रूप हो गई है, जो खुद ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हो गया है और ब्रह्म के पर कोई वस्तु भी नहीं रही है, ऐसा पाप रहित मनुष्य अपुनरावृत्ति को यानी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो परम गति उसको कहते हैं कि यहां जाकर वापिस नहीं आवे, इसी वास्ते उसका नाम अपुनरावृत्ति है, बिना आवृत्ति न हो वो अपुनरावृत्ति। फिर इसका भाव बताया जाता है तद्बुद्धि सदात्मा, आत्मा माने मन, जिसका मन ब्रह्म रूप हो गया है। मन ब्रह्म रूप कैसे हुए कि सुख चित्ताणु जो ब्रह्म है उसको आनंद को विशेष मान करके और जितने जो निराकार बातें शब्द है उनको विशेष माने और बारंबार एक प्रकार से प्रत्येक विशेषण के साथ में आणु शब्द को रख करके अभ्यास करे, एकांत में बैठ कर। कैसा वो परमात्मा का स्वरूप है, आनंद है, कैसा आनंद है, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, निश्च आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, परमानंद, महानंद, अत्यंत आनंद, अचिंत आनंद, आनंद ही आनंद, पूर्ण आनंद माने वो आनंद अपने आप करके परिपूर्ण है उसमें, और गुंजास नहीं, वो घन है, प्रचुर है और अपार है, उसकी सीमा नहीं, उसका अंत नहीं, जैसे आकाश की सीमा नहीं, इसी प्रकार उसकी सीमा नहीं, वो आकाश से भी बढ़कर इस आकाश की तो कल्पना परमात्मा ने अपने मन से की है, इस वास्ते मन के अंतर्गति है। रात्रि के समय में स्वप्न में जो सृष्टि दिखती है उसका जो आकाश है जिसको स्वप्न आता है उसके मन के माँ है, किंतु ब्रह्म के प्रकार से खुद किसी के मन में नहीं, बस तो अनंत ऐसी महर आनंद स्वरूप, इस वास्ते उसको अपार आनंद कहते हैं, अनंत आनंद कहते हैं, शांति जब स्वरूप है इस बात उसको शांत में आनंद कहते हैं, जिससे परहित है और घन माने गहरा प्रचुर है एकदम, इस बात उसको घन आनंद कहते हैं। अचल आनंद माना वो सदा कायम रहता है और आप ही अपने आप में स्थित है, कोई किसी देश में नहीं जो एक देश से दूसरे देश में चला जावे। ध्रुवान माने वो नित्य सत्य है और नित्य होने से वो सत्य है, इस वास्ते वो दुष्ट रूप माने निश्चय स्वरूप सत्य स्वरूप है, और चेतनी बंध स्वरूप है, इस वास्ते उसको बोध स्वरूप आनंद कहते हैं, जिनमय आनंद कहते हैं, ज्ञान स्वरूप आनंद कहते हैं, और परमानंद माना उससे बढ़कर और कोई आनंद है नहीं, इस वास्ते सबसे पर है, सबसे श्रेष्ठ है, इस वास्ते परमानंद और महान आनंद की उसकी महत्ता कोई बतला नहीं सके, महान से भी महान है, उसको महान कहते हैं। और उसका कभी अंत नहीं होता, उसकी कोई अंत होने की बात नहीं, स्वास्थ्य वो अक्षय आनंद और अचिंत आनंद, उसका कोई चिंतन नहीं कर सके, मन के चिंतन में जो आता है, बुद्धि के समझ में जो आता है वो सात्विक आनंद है, वो समझ में नहीं आता, बुद्धि से भी परे है, केवल एक आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवा दूसरी वस्तु तो नहीं है। इस प्रकार से थी जैसे मैं वाणी से कह रहा हूं, ऐसा अपने एकांत में बैठ करके मन से मनन करे, तो मनन करके करते करते मन सदरूप हो जाता है, ब्रह्म के मां विलीन हो जाता है, जैसे बर्फ का घेला जल में रहने से गल करके जल ही बन जावा है, तो जल में विलीन हो जाए बर्फ का घेला, इसी प्रकार से यह मन ब्रह्म के बीच में ब्रह्म रूप हो जाए, ब्रह्म का मनन करते करते, जैसे भूरा जो है सुनते सुनते और भूला ही भूल जावा है, लट जो है फला उसका लट है, वो लट को भौरा पकड़ कर लाकर उसको शब्द सुनाता है, और वो लट के रूप में है तो शब्द सुनने से भी उस आगे जागरूक को भूमरे का रूप बन जाता है। इसी प्रकार से थी, इस प्रकार का अभ्यास करते करते, ब्रह्म का अभ्यास करते करते उसका मन है तो ब्रह्म भी बन जाता है, ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तब बुद्ध है, फिर उसके बाद में वह बुद्धि है वो भी ब्रह्म रूप बन जाए। कैसे? विशेष रूप देते देते जो एक ब्रह्म का विशेष रूप है, साक्षात रूप है, वो एक प्रकार से बुद्धि के समझ में उसका भाव आता है, बुद्धि की जहां तक शक्ति है उसके समझ में आ जाता है। तो बुद्धि के जो समझ में आने वाला बुद्धि विशेष जो ब्रह्म का स्वरूप है उसको लक्ष्य बना करके है तो वो अलक्ष्य है, किंतु साधन काल में उसको एक लक्ष्य बना करके बुद्धि के द्वारा ये निर्गुण निराकार का उपासक है उसका ध्यान करता है। ध्यान के तीन बात रहती है, ध्याता ध्यान अध्येय। ध्यान करने वाला साधक तो यह ध्याता है, और जिसका ध्यान किया जाता है वो ब्रह्म का स्वरूप है, और जिसके द्वारा ध्यान किया जाता है वो बुद्धि की वृत्ति है। तो वृत्ति के रूप में बुद्धि है, उसका नाम है ज्ञान है, बुद्धि की वृत्ति का नाम है ज्ञान, और वो ज्ञान या ध्यान होता है। तो ध्याता ध्यान ध्येय में जैसे ध्येय सो ब्रह्म है, ध्याता माने जैसे ज्ञाता ज्ञान की के मन ये ऐसो ब्रह्म है, और ज्ञाता साधक है और ज्ञान बुद्धि की वृत्ति है, ऐसे ध्याता ध्यान ध्येय के मां ध्याता जो है उच्च कोटि का साधक है, और यहाँ ध्येय जो है ब्रह्म को स्वरूप है, और ध्यान है सो बुद्धि की वृत्ति है। तो इस प्रकार का जब ध्यान किया जाता है उस परमात्मा के निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप का जब ध्यान किया जाता है, तो वो ध्यान करते करते ध्याता ध्याकार को प्राप्त हो जाता है, यानी ब्रह्माकार को प्राप्त हो जाए, ब्रह्म के मन तद्रूप हो जाता है। या यूं कहो कि जिस बुद्धि के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का ध्यान किया जाता है, बुद्धि वृत्ति के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का जहाँ ध्यान किया जाता है, तो ध्यान करते करते वो अपने बुद्धि वृत्ति बुद्धि सहित वो बुद्धि वृत्ति देहाकार को प्राप्त हो जाती है, यानी ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त हो जाते है, और ध्याता भी उसमें ब्रह्म रूप को प्राप्त हो जाता है, यानी ब्रह्म के स्वरूप में जाकर स्थिति हो जाती है। तो तद्बुद्धि का मतलब यह है कि बुद्धि का स्वरूप निश्चय करना, तो परमात्मा के स्वरूप को निश्चय करने वाली बुद्धि, पर परमात्मा का ध्यान करते करते वो बुद्धि ऐसे परमात्मा में विलीन हो जाती है, जैसे मन विलीन हो गया ऐसे बुद्धि विलीन हो जाती है, तो ये त्रिपुटी मिट जाती है। ध्याता ध्यान ध्येय तीन चीज नहीं रह करके केवल ध्येय जो है ब्रह्म ब्रह्म ही सो रह जाते हैं, परमात्मा ही रह जाते हैं। और ध्याता और ध्यान माने बुद्धि सहित बुद्धि और ध्यान करने वाला ध्याता पुरुष की अलग सत्ता नहीं रहती, केवल माने समझो कि ब्रह्म का स्वरूप ही रह जाता है। तो उसके बाद के बीच के मां जो है ब्रह्म ही रह, तो यह एक प्रकार से आरंभ की समाधि है। समाधि क्या कि एक ब्रह्म ही रह गया, तो यह समाधि सदिकल्प समाधि, इसके बीच के मां जो है शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है, इसको सदिकल्प समाधि भी कहते हैं। से विचार समाधि भी कहते हैं। ब्रह्म का जो निराकार स्वरूप है वो यहां रहता है, माने ब्रह्म का नाम, ब्रह्म का स्वरूप और ब्रह्म का ज्ञान। जैसे कोई आदमी किसी भी पदार्थ का ध्यान करके उसमें तद्रूप हो जाता है, तो उस पदार्थ के नाम रूप और ज्ञान का विकल्प वहां रहता है। ये बात महर्षि पतंजलि ने पातांजलि योग दर्शन के पहले पाद में समाधि का विषय बताया है। तो इस विकल्प समाधि के बीच में विकल्प किसका विकल्प, तो ब्रह्म के विषय में समाधि है, ब्रह्म विषय के विकल्प, तो ब्रह्म का नाम, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का रूप। जैसे एक गऊ है तो गऊ का नाम जो वाणी से उच्चारण किया जाता है वो गऊ का नाम है, और जो खास जो गा है वो गा, उस गो शब्द का अर्थ है। और ये जो ज्ञान है कि यह गा है वो गऊ के भीतर का ज्ञान है। इसी प्रकार से ब्रह्म का स्वरूप और ब्रह्म विषय का ज्ञान और ब्रह्म का नाम, ये ब्रह्म विषय की तीन चीज ब्रह्म ही है, ब्रह्म से कोई अलग नहीं है। इससे सब जैसे ज्ञान तीन भागों में विभक्त है। इस बार से ये संकल्प रहने से सभी को समाधि है, आगे जाकर के ये सिंगल कैसे मिल जाता है तो ही समाधि। सभी समाधि में तो ब्रह्म के रूप में स्थिति होती है, और निर्विकल समाधि के बीच के ना फिर उसके प्राण हो जाता है ब्रह्म के ना, ये सब जब ज्ञान तुम्हें नहीं रहती। सदुद्धात्माना सन निष्ठा तत्पराना सन निष्ठा, तो पहले ब्रह्म के स्वरूप में निष्ठा माने स्थिति होती है, ब्रह्म के मन तन्मयता हो जाती है, ब्रह्म के मां इसकी स्थिति हो जाती है। स्थिति के वक्त की मां सब दर्श ज्ञान इनका विकल्प रहता है, और तत्पराण निष्ठा तत्पराण, फिर वे ब्रह्म के प्राण हो जाते हैं। ब्रह्म पयन परम आयन, ब्रह्म जिसका परम आयन माने स्थान हो जाता है, और आगे जाकर वो ब्रह्म में फिर तन्मय होकर विलीन हो जाता है। तो पहला ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति और फिर ब्रह्म रूपता, या ब्रह्म रूपता जो है ब्रह्म का स्वरूप, जैसे साधन काल में समझा था ऐसा ब्रह्म का स्वरूप है। इसका जो फल है, नतीजा जो परिणाम है, वो असली ब्रह्म की प्राप्ति। ये तो साधन काल के माध्यम से ब्रह्म का स्वरूप समझा था, उस प्रकार का समझ करके उसका ध्यान किया था, ध्यान होने के बाद समाधि होगी, और समाधि होकर के अपने समझे हुए ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति हुई। किंतु जो असली जो वास्तविक जो ब्रह्म का स्वरूप है वो तो इसका भी अशो फल है जो बतलाया गया। तद जैसदात्मान निष्ठा द्वारा गच्छन का पुनरावृत्ति ज्ञान निर्दुत कर्म था, ज्ञान निर्दुत कर्म था अपुनरावृत्ति गच्छन थी, माने जिनके कर्म समान पाप, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के द्वारा जिनके मल भिक्षे पर आवरण नाश हो गए हैं, ऐसे जो महात्मा पुरुष है वह पुनः नहीं आने वाली जो गति है, परम गति जिसको कहते हैं, वो असली ब्रह्म की जो प्राप्ति है उस परम गति को प्राप्त हो जाता है ना, असली ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ये उस साधन का फल है। तो साधन काल में तो भेद है और सिद्ध अवस्था में अभेद है।